સત્સંગ પ્રેમી માધવ બહેનો ઓર ભાઈ દાયિત્વ પૂરા કર દેંગે માંગ પૂરી હો જાયગી એસા માનવ જીવન કા સત્ય હૈ ઇસ સત્ય મે આસ્થા હો જાને પર દાયિત્વ પૂરા કરને કી તત્પરતા માનવ જીવન મે બઢ જાતી હૈ જૈસે જૈસે મે મહારાજ જી કી વાણી અભી સુન રહી થી મેરે ધ્યાન મે આ રહા થા કે યોગવિત હોના તત્વવિત હોના ઓર ભગવત ભક્ત હોના યે બાતે હમ સભી ભાઈ બહેનો કો સ્વભાવ સે પસંદ હે એસા હમ સબ લોગ હોના ચાહતે હે ક્યા કારણ હે કે સત્સંગ સુનને વાલે ભાઈ બહેનો મે સે कुछ लोग तो इस दिशा में बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा हम लोगों को मालूम होता है। और अपनी ओर देखो तो विकास के क्रम में कुछ शिथिलता दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं सोचती हूं। संघ महाराज ने एक महिला साधक के संबंध में बताया कि किसी संत का बड़ा प्रभाव हो गया उनके जीवन पर, तो बड़ी श्रद्धा भक्ति उपज गई उनके प्रति। वे लोग किसी नदी के किनारे किनारे कहीं जा रहे थे, तो महिला के हाथ में बहुत मोटे मोटे सोने के कड़े थे, पहने हुई थी। कुछ दूर चलते चलते पता नहीं संत के जी में क्या आया, तो उन्होंने कहा कि क्या करेगी ये सोना पहन के। तो महिला ने कहा कि क्या करूंगी महाराज, कोई खास बात नहीं है, तो निकाल के डाल दी जल में। तो उन्होंने दोनों हाथों में से निकाला और जल में डाल दिया। कोई बात नहीं, चले जा रहे हैं अपना। कुछ दूर तक जाने के बाद संत ने उस देवी से पूछा कि सोने के कड़ों का कोई ध्यान तो नहीं आ रहा है तुमको। तो इन्होंने कहा नहीं महाराज, हमको तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है। संत ने कहा कि भाई हमें तो ध्यान आ रहा है, तुमसे डलवा दिया मैंने। तो बोली कि आप अपने पर इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा महाराज, हमें नहीं लग रहा। ऐसा उत्तर दिया उन्होंने कि हमको तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है। तो हृदय में एक उच्चता होती है, जैसा मैंने संत वाणी में सुना। जीवन में पहले से एक तैयारी होती है, जिसके प्रभाव से संत की वाणी सुनो, गुरु के वाक्य सुनो, ग्रंथ के वाक्यों को पढ़ो, तो जिस समय जो कुछ सुनने समझने में आया, इसका बड़ा गहरा असर हो जाता है अपने पर, बड़ा गहरा असर हो जाता है अपने पर। और अगर इस प्रकार की तैयारी नहीं है, तो सोचते सोचते, समझते समझते, कोशिश करते करते, धीरे धीरे विकास होता रहता है। एक सज्जन अभी जीवित हैं, तो करीब 30-35 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने बहुत धन कमाने का उनका रोजगार था और अच्छा रोजगार था, तो उसे छोड़ दिया और स्वावलंबी होकर, स्वावलंबी इस अर्थ में कि नौकर चाकर से काम नहीं लेंगे, तो खुद ही अपना कमरा साफ करेंगे, खुद ही अपने कपड़े धोएंगे, खुद ही अपने खाए हुए बर्तन धोएंगे, सफाई रखेंगे, बिस्तर बनाएंगे। तो पैसा वाला होने के कारण से बहुत आराम से रहने की उनकी आदत थी और एकदम से उन्हें धुन लगी तो सब कुछ एक साथ छोड़ दिया और बहुत ही सावधानी से साधना में लग गए। उनके संबंधी मुझको बता रहे थे इस बार कि जब मैंने जा करके स्वामी जी महाराज को बताया कि बड़ा ही त्यागमय जीवन हो गया है और ऐसे ऐसे उन्होंने रहन सहन अपना आरंभ कर लिया है और सब समय वो अपनी साधना में लगे रहते, ऐसा उन्होंने प्रसन्न होकर के स्वामी जी महाराज को बताया। तो स्वामी जी महाराज ने सुना, अब नजदीक से जानते होंगे अथवा अंतर्यामी रूप से उनको साधकों के जीवन का चित्र अपने आप दिखता ही रहता था। वो सदा मुझे इस बार बता रहे थे कि स्वामी जी महाराज सुन करके गंभीर हो गए और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, वो आदमी अपनी साधना में बल का प्रयोग कर रहा है, अपने से लड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस समय ये बात समझ में किसी के नहीं आई क्योंकि सब नाते रिश्ते कुटुंबी अपने पराए सभी लोग उनके रहन सहन से और त्याग से एकदम प्रभावित हो गए थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया बल का प्रयोग कर रहा है, वो लड़ रहा है अपने से। सुन लिया इन लोगों ने, चुपचाप रहे, कोई बात ही नहीं है। बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद उन साधक सज्जन के जीवन में भीतर से सरसता नहीं उपजी होगी, ऐसा हम लोग अब अनुमान लगाते हैं। तो बड़ी खिन्नता है, बड़ा क्षोभ है, बड़ी उदासी है और निकटवर्ती कुटुंबी जनों की ओर से कुटुंबी जनों के प्रति जीवन में बड़ी बड़ी आशाएं हैं। इनको ऐसा करना चाहिए मेरे लिए, इनको ऐसा करना चाहिए मेरे लिए, ये सब अब पैदा हो गया। सुना मैंने सब समाचार तो भीतर भीतर एक चिंतन पैदा हो गया मेरे। मैंने सोचा कि प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था के बाद की बात है, प्रौढ़ावस्था में जब शरीर हर प्रकार से हृष्ट पुष्ट है और बहुत अच्छी तरह परिश्रम कर सकता है आदमी, तो ये क्या उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता थी कि उन्होंने कर्मचारियों से मदद लेना, अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम में किसी से भी मदद लेना एकदम बंद कर दिया और बिल्कुल अपने आप से अपना सब संभालने लगे, करने लगे, देखने लगे? तो यह त्याग का बल था कि शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता का बल था, ऐसा मैं सोचने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि क्या जाने अपने साथ भी कहीं ऐसा न हो कि शारीरिक असमर्थता की घड़ी में दूसरों के प्रति बहुत प्रकार की आशाएं जागृत हो जाएं कि इनको ऐसा करना चाहिए मेरे साथ, इनको ऐसा करना चाहिए मेरे साथ, ऐसा मैं सोचने लगी। फिर मेरे ध्यान में आया कि अब दोनों तरह की बातें रख रही हूं मैं आपके सामने। एक वो साधक के जिसके जीवन में इतनी तैयारी थी कि संत के कहने से उन्होंने महिलाओं को सोना हीरा का शौक भी रहता है और महत्व भी रहता है, तो उन्होंने संत के कहने से
एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं और सब उतार करके डाल दिया झट से गंगा जी में। उसके बाद उनके मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं आया उसके बारे में। एक ये दृश्य, और दूसरा ये कि सब कुछ करने के बाद लंबी अवधि बीत गई उस रहन सहन में, और फिर पुरानी वो सारी बातें लौट करके आ गई कि ये अमुक समय पर मेरा ये सब अमुक काम होना ही चाहिए, और नाते रिश्ते अपने पराए नौकर चाकर सबको हमारे पर ध्यान देना ही चाहिए। ये सारी बातें फिर दोहरा के आ गई। और मंगलमय विधान प्रभु का ऐसा है कि सब कुछ रहते हुए भी अब किसी का जी ही नहीं होता है कि उनकी बहुत अच्छी सेवा की जाए। ये भी मैंने देखा, सब सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष परिस्थिति की प्रतिकूलता आ गई हो, सो नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे बताया उनकी बात को ध्यान में रखकर मैं कह रही हूँ। अब असली बात मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो जो अपने लिए और आप सभी भाई बहनों के लिए आवश्यक है, वो मैं अब कहने जा रही हूँ। वो क्या है कि जैसा ये उदाहरण सामने आया, जब जब चारों ओर उनका जय जयकार हो रहा था उस गृहस्थ साधक का गृह त्याग के समय, तो स्वामी जी महाराज ने ये वाक्य कह दिया कि भैया वो तो बल का प्रयोग कर रहा है, लड़ रहा है अपने से। ये बात बहुत अच्छी नहीं निकली, बल का प्रयोग करके अपने पर दबाव डाल करके और त्यागमय जीवन की नकल करना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बात भी बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। आगे चल करके वे सज्जन बहुत तकलीफ में पड़ गए। और भी इस बार दो चार गृहस्थों के बारे में इस तरह का समाचार मुझे सुनने को मिला। चारों की कहानी नहीं बता करके बस एक ही दो में खत्म कर रही हूँ मैं, आगे हम लोगों को अपने बारे में सोचना है। तो अभी मेरे ध्यान में आया कि घर गृहस्थी में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जन समाज से संपर्क रखते हुए, यदि हम लोग आई हुई अनुकूलता को दुखी गुणों की सेवा में लगा करके अपने चित्त को शुद्ध और शांत नहीं कर लेंगे, तो योगवित होना, तत्ववित होना और भगवत भक्त होना, ये तीनों ही उद्देश्य हमारा अपूर्ण रह जाएगा। एक खास बात मेरे ध्यान में आई, समझी महाराज ये तो कभी कहते ही नहीं है अपनी ओर से कि इतनी देर बैठ करके नाम लेना, कि इतनी देर बैठ करके जप करना, कि इतने इतने तीर्थाटन करके आओ, कि इतने दिन उपवास करो, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये नहीं है कि जप तप उपवास और व्रत इत्यादि को बुरा माना जा रहा है कि खंडन किया जा रहा है, तो बात नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर, अशुद्धि मिटाकर, उसको शुद्ध करके, उस सीमित व्यक्तित्व के मोह से मुक्त करके योगवित तत्ववित भगवत भक्त होने के जो मूल उपाय हैं वो हम लोगों के सामने रख दिए। और ये सब जो हैं बाहरी क्रियाकलाप इत्यादि, ये सब सहयोगी हैं। लेकिन किसके जीवन में ये सजीव होते हैं? जिन्होंने उस मूल उपाय को कर लिया है, उसके द्वारा ध्यान, जप, पूजा, व्रत, जो भी कुछ ये सब किया जाता है, सब सजीव होता है, सबका अच्छा फल निकलता है। और वह मूल उपाय जिसने नहीं किया है, उसके लिए ये सब उतने लाभदायक सिद्ध नहीं होते। कभी कभी मैंने ऐसा सुना संत वाणी में कि ये कालांतर में जाकर के फलित होते हैं। तो उस मूल उपाय पर ध्यान दीजिए। तो मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की शक्तियां हैं साधना के पथ पर आगे बढ़ाने वाली। एक तो है वो कि जिससे आदमी को प्रकाश मिलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से नहीं चलना चाहिए, इस बात का एक निर्णयात्मक प्रकाश प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। तो वो प्रकाश क्या है कि वो प्रकाश जो है वह जीवन दाता का दिया हुआ मार्गदर्शक है। वो हमारी उपज नहीं है, वो मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? मानव मात्र को मिला हुआ है। ऐसा वो एक प्रकाश है जिसमें कि व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने का ज्ञान निर्णय मिलता है। ये तो एक जीवनदाता जन्मदाता का दिया हुआ प्रकाश है जो कि सब में सदा के लिए विद्यमान रहता ही है। दूसरी एक शक्ति और है मनुष्य के भीतर, मनोविज्ञान वाले उसको लिबिडिनल फोर्स कहते हैं। संपूर्ण जीवनी शक्ति को एक साथ मिलाकर उसको अनुवाद करने के लिए हिंदी शब्द बनाए गए हैं, लेकिन मुझे कुछ ठीक जंचते नहीं। किसी ने ऊर्जा कहा, किसी ने और कुछ कहा, तो मैं अपने को समझाने के लिए और जिस तरह से मेरी समझ में आया उसी तरह से आपके सामने रखने के लिए उसको जीवनी शक्ति कहती हूँ। भाव पक्ष की प्रबलता वो एक शक्ति मनुष्य में होती है। जिस शक्ति का काम है कि आपको विवेक के प्रकाश में जैसा दिखाई दे रहा है उस पर आप चल पड़े। तो दो बातें हुई ना, एक से दिख रहा है कि ये सही रास्ता है और एक शक्ति आपको मदद दे रही है कि इस पर चल पड़ो। तो जिन लोगों ने ये विवेक का प्रकाश और हृदयशीलता के आधार पर उस प्रकाश में चलने की शक्ति, दोनों का विकास साथ साथ होता रहता है, उनको देर नहीं लगती है। ग्रंथ में से पढ़ लिया तो क्या, और संतों के मुख से सुन लिया तो क्या, और किसी के प्रति श्रद्धा भक्ति है तो गुरु बना लिया, उसके मुख से वाक्य सुन लिया तो क्या, चाहे जैसे हो, उसको अपने जन्मजात प्राप्त विवेक के प्रकाश में जो सही बात जंच जाती है उसके अनुसार चलने में उसे देर भी नहीं लगती, दिक्कत भी नहीं होती। और जिन साधकों में ये लिबिडिनल फोर्स जिसको कहते हैं, जीवनी शक्ति जिसको कहते हैं, यह हृदयशीलता का भाव पक्ष की प्रबलता जिसको कहते हैं, ये अंश कम विकसित है। ऐसा न कह करके मैं ऐसा कहूं कि अधिक कुंठित हो गया है। उनको सुने हुए समझे हुए मार्ग पर चलने में देर लगती, दिखाई देता है और चला नहीं जाता। ऐसा कभी आपने अनुभव किया है? जी, रोज होता है। क्या होता है? भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो योगवित होकर के
उस अविनाशी से अविनाशी योग हो जाने के बाद का जो आनंद है उस आनंद को पसंद नहीं करेगा। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि मरणशील शरीर के रहते रहते उस अविनाशी जीवन से अभिन्न होकर अखंड आनंद में निवास करना पसंद नहीं करेगा? कौन ऐसा आदमी होगा जो जीवन भर की नीरसता से जला हुआ तड़पा हुआ अनंत माधुर्यवान के अजस्र प्रेम रस की धारा से अपने को आह्लादित करना पसंद नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई होगा। ऐसा ही लगता है कि अगर वह मनुष्य है तो योगवित होना, तत्ववित होना, भगवत भक्त होना अवश्य पसंद करता है। उसमें सब भाई बहनों की गिनती है कि नहीं है? है, हम सब लोगों की गिनती है उसमें। अब इसके आगे आप सोच करके देखिए कि योगवित होने का, तत्ववित होने का, भगवत भक्त होने का जो जो मौलिक उपाय है, बाहरी विधि विधान और सांप्रदायिक अनुष्ठान और मत विचार पंथ इत्यादि के भेद को पार करके सार्वभौम सत्य जो स्वामी जी महाराज ने सबके सामने रखा, उस रूप में योगवित होने का, तत्ववित होने का, भगवत भक्त होने का उपाय हम लोगों को मालूम है कि नहीं है? बोलिए। उपाय तो मालूम है, सुना ही है और रोज सुन रहे हैं प्रतिदिन, और अपने महाराज जी की वाणी जो सुन रहे हैं उसमें भी सुन रहे हैं, और भी कहीं भी किसी संत महात्मा के पास जाइए तो वहां से भी सुनाते हैं, किसी भी सदग्रंथ को उठा करके पढ़ना आरंभ करिए तो उसमें भी वही लिखा है। तो उपाय तो अपने सब लोगों को मालूम है, अपनी आवश्यकता का भी ज्ञान है, हमें वह जीवन चाहिए जिसमें मृत्यु नहीं है, हमें वह रस चाहिए जो क्षतिपूर्ति से रहित है, हमें वह सुख चाहिए जिसमें दुख मिश्रित नहीं है। आवश्यकता तो अपनी है अपने सामने, और बिना किसी के सिखाए समझाए, बिना किसी के पढ़ाए लिखाए इस आवश्यकता का ज्ञान सब मनुष्यों को होता है, तो आवश्यकता भी मालूम है। और कैसे होगा ये उपाय भी मालूम है, ठीक मालूम है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी को बुरा मत समझो, किसी के साथ बुराई मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। जहां तक हो सके सहयोग देते रहो, ऐसा करोगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। दी हुई की हुई भलाई के बदले में किसी प्रकार की आशा नहीं करोगे, सब कामनाएं छोड़ दोगे तो चित्त शांत हो जाएगा। और योग किसका नाम है भाई? मन और चित्त की शुद्धि और शांति का नाम योग है। तो आज तक अपने को योगवित होकर रहने आया ही नहीं, सहज समाधि की बात अनुभवी संतों ने हम लोगों को सुनाया है, तो वो सहज समाधि की बात तो छोड़ दो, वह तो अपने लिए बहुत दूर मालूम होती है। 24 घंटे में आधा घंटा प्रातः काल और 15 मिनट संध्या समय मूक सत्संग का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, और जब कभी मौका मिले जिस भाई बहन को, उस समय भी इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो क्या हो गया अपने को कि आधे घंटे के लिए भी चिंतन से मुक्त होकर शांति में रहना पसंद करें? ये सोचने की बात है कि नहीं है जी? है, सोचने की बात है। क्या हो गया? चित्त का शुद्ध होना और शांत होना इतना जरूरी काम है और अशरीरी जीवन में प्रवेश करने के लिए अथवा अलौकिक अविनाशी तत्वों से अभिन्न होने के लिए ये पहला ही कदम है कि चित्त शुद्ध और शांत हो। और चित्त की शुद्धि और शांति का उपाय भी अपने को मालूम है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन याद रहता हो दूसरे दिन हम भूल जाते हो, तो भी नहीं है। फिर भी क्या कारण है, ऐसा सोचना चाहिए। तो एक संत के मुख से मैंने ऐसा सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। उन्होंने मुझे बताया कि उनके गुरु महाराज बड़े महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। तो वे मनुष्य के व्यक्तित्व की व्याख्या कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करो तो स्थूल शरीर से संग छूट जाता है, और ऐसे ऐसे करो तो सूक्ष्म शरीर से संग छूट जाता है, और इस तरह से रहो तो कारण शरीर से संबंध टूट जाता है, और जब तीनों शरीरों से तादात्म्य टूट जाता है तो व्यक्ति उस जीवन से अभिन्न हो जाता है जिसमें मृत्यु नहीं है, अखंड आनंद है। तो बताते बताते उन्होंने ऐसे कहा कि पता नहीं क्या हुआ था कि गुरु महाराज कहते जा रहे हैं और जैसा जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसा वैसा अपने साथ घटित होता जा रहा था। उन्होंने वर्णन किया ऐसे ऐसे ज्ञान के आधार पर शरीरों से तादात्म्य टूटता है। तो जैसे जैसे गुरु करते गए वैसे वैसे तादात्म्य उनका टूटता गया, और व्याख्यान जब खत्म हो गया गुरु महाराज का तो इनका शरीर से कोई संबंध था ही नहीं। शिष्य महाराज जो हैं वो अशरीरी जीवन के आनंद में डूबे हुए हैं। तो शरीर कहाँ है, संसार कहाँ है, इसका पता कहाँ चलता है? वो तो पता रहता नहीं है। तीनों शरीरों से संबंध टूटा नहीं कि सृष्टि लुप्त हो जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ उनका? मैंने तो जब सुनना आरंभ किया तो इन बातों को सुनने में, सहन करने में, समझने में और उनको पकड़ने की चेष्टा में सिर से पांव तक एक एक स्नायु ऐसे ऐसे स्पंदित होने लगते थे। समझी महाराज की सभा में से जैसे ही खत्म होता था व्याख्यान उनका, उठ करके भाग करके जाके एकांत में कहीं कोठरी में दरवाजा बंद करके मैं बैठ जाती थी। और सुनने समझने की चेष्टा तो जाने दो, जब ये ग्रंथों को लिखवा रहे थे महाराज तो मैं बैठ करके लिखती रहती थी। कई सहायक लोग सहायता करते रहते थे, गर्मी के दिन होते थे, गर्मी की छुट्टियों में आती थी। तो लिखवाते जा रहे हैं स्वामी जी महाराज, और जो वाक्य में लिखती जाती उसके अर्थ को पकड़ने की चेष्टा में भी सारे शरीर का एक एक तंतु, एक एक स्नायु एकदम से कंपित होने लग जाता है। उसमें झिनझिनाहट पैदा हो जाती है। और लिख के खत्म करते ही जहाँ के तहाँ सब छोड़ के एकांत में जाके दरवाजा बंद करके मैं छिप जाती, लेट जाती। ऐसा होता, समझने की चेष्टा करने में इतना एक्सप्लेन हो जाता था। और उस साधक की महिमा का तो वारा पार नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज बोलते जा रहे थे और वो जैसे जैसे सुनते जाओ वैसे वैसे एक एक शरीर का तादात्म्य टूटता गया और जब खत्म हो गया व्याख्यान सब लोग उठ गए, आरती हो गई, जय जयकार हो गया, इनको कुछ पता नहीं है। ये दृश्य का संबंध कब तक बना है? जब तक मुझे दृश्य के से संबंध पसंद है, जब तक शरीरों का तादात्म्य टूटा नहीं, तब तक ये सृष्टि दिखाई देती है। और स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनसे संबंध टूटा नहीं, ये सृष्टि लुप्त हुई, तो वो है ही नहीं है। तो ये बात कल्पना नहीं है, ये बात हवाई नहीं है। और जो लोग जीवन की गहराई में नहीं पहुंचते हैं, केवल इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि के व्यापार को ही जीवन का सत्य मानते हैं, वे लोग तो घबरा जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी हंसी उड़ाते हैं, अरे ये तो आम से डिस्कशन है, ये तो लेजर आउट पास टाइम है, ये अब दुनिया के किसी काम के लायक नहीं रहे, तो ऐसी काल्पनिक बातों की चर्चा करते रहो जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कहने लग जाते हैं। लेकिन बात ये बिल्कुल समझो, तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि मेरे लिए तो सुन करके और उसको उसको ग्रास्प करने में इतना मेंटल स्ट्रेन कि एक एक स्नायु एकदम कांपने लगता था, हाथ पांव झिनझिनाने लगते थे, फिर ऐसा हो जाता था तो हमको चुपचाप एकांत में जाकर के लेटना। वो इसलिए मैं करती थी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कि जो स्ट्रेंथ पड़ा है स्नायु पर वो स्थिर हो जाए, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करूंगी, दूसरा कोई काम नहीं करूंगी, वृत्ति को इधर उधर नहीं होने दूंगी, जो कुछ मैंने सुना है उसी में रखूंगी, इसलिए अकेले में जाकर बैठ जाती ऐसे करती। और उस साधक को ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो सुनते जा रहे हैं, संबंध टूटता जा रहा है, सारी मंडली उठ गई, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, वो शरीर जहां के तहां शिथिल, बिल्कुल शांत जैसे कि तैसे बैठा हुआ है। तो बाद में ध्यान गया लोगों का, तो पुकारना आरंभ किया नाम लेकर के, भाई उठो, सत्संग खत्म हो गया, चलो। उनका सत्संग खत्म थोड़ी हुआ था, उनका तो सच्चा सत्संग हो गया था, ये तो तीनों शरीरों से अतीत अविनाशी जीवन से मिलके उस आनंद में, उस आनंद की मस्ती में थे, उनको क्या पता। तो जब शोरगुल होने लगा, इधर उधर बातचीत होने लगी, तो गुरु महाराज ने बुला करके लोगों को मना किया कि अरे भाई, तुम लोग तो देहातीत जीवन की चर्चा सुन के जा रहे हो, ये तो देहातीत जीवन में पहुंच गए, इसलिए अब इनको जाने के लिए मत कहो, नाम लेकर पुकारो मत, इनको छोड़ दो, उस आनंद में रहने दो। तो उनको जहां के तहां जैसे के तैसे बैठा हुआ छोड़ दिया गया, लोग सब चले गए। और बड़े आनंद से बताया उन्होंने, अपने ही मुख से बताया मुझे कि कितना समय वहां बीता, कई घंटे बीते होंगे। फिर गुरु महाराज ने स्वयं ही उनको सचेत किया, तो कहें कि नाम लेकर के पुकारने पर कोई ध्वनि सुनाई गई तो हमको लगे कि कौन पुकार रहा है और किसको पुकार रहा है, पता ही नहीं चले। मैं पूछूं बार बार, कौन पुकारने वाला, कौन और सुनने वाला, कौन कौन पुकार रहा है और किसको पुकार रहा है, इस भेद का ही पता नहीं चले उनको। काफी समय लगा। तो अब अपने लिए क्या है, एक बात आप अपने से पूछिएगा, आज रात को जब सब कार्यक्रम पूरा हो जाए, आप अपने विश्राम की जगह पर जब पहुंचे तो अकेले में बैठ करके अपने बारे में सोचिएगा। मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि विचार के आधार पर योगवित होने का, तत्ववित होने का, भगवत भक्त होने का उपाय जो है वो तो हमारी समझ में बहुत सहज से आ जाता है, दिखता ही है ना। अमुक कामना के फेर में पड़ करके मैंने अपनी को इतना अशांत किया और फिर अपनी अशांति से
मैंने निकटवर्ती जन समूह में खलबली पैदा की, ये बात सूझती तो वही है। और ऐसे 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 कठिन विषम परिस्थितियों में मैंने अपनी ओर से अपने मन के संकल्प का त्याग कर दिया तो मेरे भीतर भी शांति हो गई, निकटवर्तियों में भी शांति बनी रही। ये दोनों तरह के अनुभव आपको हैं, मालूम है आपको। तो इसी तरह से अकेले में बैठ करके सोच करके जाकर देखिएगा, आपको स्वयं पता चलेगा। मुझे क्या पता चला तो मैं आपको बताऊं। मुझे पता यह चला कि अनुकूलता का सुख जितना ही अधिक अपने लिए मैं पसंद करूं उतना ही अधिक जीवन रस का स्रोत जो है वो क्षीण होता है, ये पता चला मुझे। इसी का यह परिणाम हो गया कि योगभूत होने का, तत्वभूत होने का, भगवत भक्त होने का उपाय भी मालूम है, आवश्यकता भी है, रास्ता भी साफ दिखाई देता है और वर्तमान क्षण उसके लिए सबसे उपयुक्त क्षण है। वो निकलता जा रहा है और दिखाई देता है कि अभी भी जीवन साध्य से अभिन्न नहीं हुआ। मुझे एक खास कारण ये मालूम हुआ, मनुष्य के हृदय में जो रस स्रोत है जिसके संसार से वह अपने आप में इतना भरपूर अपने को अनुभव करता है कि बाहरी सहारे को तोड़ना उसे कुछ लगता नहीं है, सब कुछ तोड़ करके आगे निकल जाता है। और हमें लगता है सहज नहीं मालूम होता, अपने पर थोड़ा प्रेशर मालूम होता है, जहाँ जहाँ त्याग का प्रश्न आया वहाँ पर अपने पर थोड़ा सा दबाव मालूम होता है विचार का, जैसा मैंने सोचा वैसा झटपट में कर डालू और सहज से कर डालू और कर डालने के बाद फिर पीछे की ओर न देखूं, इतनी स्वाभाविकता अपने जीवन में नहीं दिखाई देती है। जहाँ जहाँ ऊंचाई पर उठने का प्रश्न आता है वहाँ पर थोड़ा दबाव मालूम होता है, थोड़ी पीछे की तरफ खिंचाव मालूम होता है। तो जब अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण मैंने किया, एनालिसिस मैंने किया, तो मुझे यह सूझा कि जहाँ जहाँ जीवन में थोड़ी सी भी अनुकूलता है उस अनुकूलता का सुख पसंद कर लो तो सन्मार्ग पर चलने वाला, चलने में मदद देने वाला जो लिबिडिनल फोर्स है उसमें शिथिलता आ जाती है। जो जीवनी शक्ति है, जो रस का स्रोत है, वो छीण हो जाता है, पतला हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। हम सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं और जहाँ त्याग की घड़ी आती है वहाँ पीछे हट जाते हैं। तो अकेले में बैठ करके अपने संबंध में इस विषय पर सोचना चाहिए और लगे कि भाई मार्ग तो दिखाई दे रहा है और चलने में बहुत शिथिलता मालूम हो रही है। अगर ऐसा दिखाई दे जिस किसी भाई बहन को तो अपने बारे में सोचना, और क्या सोचना कि अवश्य ही घर में, परिवार में, समाज में, आश्रम में, निकटवर्ती जन समूह के बीच में कहीं भी मैं हूँ वहाँ पर बहुत संभव है कि अनुकूलता जनित सुख को पसंद करके उस तरह से हम चल रहे हैं। जिसने पराश्रय और परिश्रम जनित सुख को पसंद किया उसके हृदय में से यह जीवन रस स्रोत सूखता है, क्षीण होता है और यही कारण है कि रास्ता दिखाई दे रहा है और चलने में देर लग रही है, नहीं तो देर लगने की जरूरत नहीं।